फेडरल सरकार ने $20 मिलियन के परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उन अस्थायी वीजा धारकों को वित्तीय मदद मिल सकती है जो घरेलू हिंसा से जूझ रहे हैं। रेड क्रॉस द्वारा संचालित फेडरल सरकार का ये पायलट कार्यक्रम अस्थायी वीजा धारकों को आवास, चिकित्सा या अन्य सहायता जैसी सेवाओं से मदद लेने के लिए $3,000 तक की रकम देता है। तो मिलते हैं रेड क्रॉस की एक उच्च अधिकारी सीमा वर्मा जी से, जो हमें इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जुड़ रही हैं। सीमा जी, आपका SBS हिंदी प्रोग्राम में स्वागत है। सीमा जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस कार्यक्रम से किस तरह के वीजा धारक मदद पा सकते हैं?
हाँ जी, बिल्कुल। ये प्रोग्राम हमने पिछले साल मई में शुरू हुआ था। हमें सरकार की तरफ से 6.5 मिलियन की राशि मिली थी टेम्प्रेरी वीजा पर, जो खासकर महिलाएं जो हैं फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार हो हैं या झेल रही हैं उस सिचुएशन को। तो टेम्प्रेरी वीजा जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जैसा कि आपने कहा। तो कोई भी, चाहे आप स्पाउस वीजा पे हैं या आप टेम्प्रेरी स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं या ब्रिजिंग वीजा पर हैं, और ब्रिजिंग वीजा भी कितने तरह के होते हैं, तो अगर आपका वीजा एक टेम्प्रेरी नेचर का है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं इस प्रोग्राम पर मदद पाने के लिए।
जी सीमा जी, इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या जानकारियां आप हमें दे सकती हैं? ये एक पायलट कार्यक्रम है जो फेडरल सरकार ने पिछले साल शुरू किया है और उसके लिए $20 मिलियन की राशि निर्धारित करी है, तो क्या है ये प्रोग्राम?
जी बिल्कुल। तो ये जो है, ये पहले पायलट था एक साल का, तो उसमें रेड क्रॉस को 6.5 मिलियन मिले थे और 3.5 मिलियन मिले थे सामुदायिक और महिला कानूनी केंद्र, द कम्युनिटी एंड वुमेन लीगल सेंटर्स को मिले हैं। और सरकार ने जो है अब अनाउंसमेंट की है कि इस पायलट की अवधि एक साल और बढ़ाई जा रही है। तो उसमें क्या है कि जो महिलाएं हमारे पास आती हैं या लोग जो हैं जो डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस के शिकार हैं, उन्हें हम तकरीबन $3,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, और वो महिलाएं फिर खुद डिसाइड करती हैं कि वो इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना चाहती हैं। या तो वो कहीं सेफ एकोमोडेशन में जाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, या अपना चिकित्सक देखभाल के लिए खर्चा उठाने के लिए कर सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उनको उस वायलेंस भरे रिश्ते से बिना किसी डर या दबाव के वो छोड़ सकें उस रिश्ते को, या सोच सकें उसके बारे में कि मैं इस रिश्ते को छोड़ना चाहूंगी, तो वो ये जो 3,000 की राशि है उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं वो।
तो जैसा आप बता रही हैं कि यह कार्यक्रम सरकार ने पिछले साल शुरू किया था, तो क्या ये कोविड के चलते घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है जिसकी वजह से इसे लागू किया गया था, और भारतीय समुदाय में इस समस्या को लेकर अभी क्या स्थिति चल रही है?
हाँ जी, तो क्या हुआ था कि ये पायलट होने से पहले हम जो है टेम्प्रेरी वीजा पर जो लोग थे उनको पेंडेमिक के दौरान एक बहुत ही छोटे सी फाइनेंशियल रिलीफ की देते थे उनको। तो उस दौरान हमने देखा कि लोग हमारे पास आ रहे हैं और बता रहे हैं कि घरेलू हिंसा हो रही है, तो हमने एक इंक्रीज देखा उस दौरान, ठीक है। और वो हमने फिर सरकार को, क्योंकि हम रिपोर्ट करते थे तो उन्होंने, सरकार ने देखा, तब ये जाकर जो है एक पायलट शुरू हुआ। तो मैं तो ये कहूंगी कि कुछ तो जागरूकता हुई है लोगों को, और कुछ लोगों को समझ आया कि उनके अधिकार क्या हैं, वो बेशक चाहे टेम्प्रेरी वीजा पर हैं वो सपोर्ट मांग सकते हैं। और इस पायलट के द्वारा हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वीजा स्थिति चाहे जो भी हो, पर जरूरत पड़ने पर अगर वो जो है डोमेस्टिक और फैमिली वायलेंस के शिकार हैं तो वो आ सके, और उनको पता हो कि वो कहाँ जा सकते हैं सपोर्ट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे पायलट में। और इसके तहत जो है और भी एक चीज़ है, जो टेम्प्रेरी वीज़ा पर जो लोग होते हैं उनको अपने अपने वीज़ा के संबंधित, माइग्रेशन से संबंधित और बाकी कानूनी सहायता से संबंधित, उनको उनको पता नहीं होता कि कहाँ जा सकते हैं। तो वो जो पैसे मिले हैं 3.5 मिलियन जो हैं महिला कानूनी केंद्रों को, उनको इसीलिए मिले हैं कि वो लोगों को वो जानकारी दे सकें और सपोर्ट दे सकें। तो हमारे पास कोई भी महिला जब आती हैं तो हम उनको उनके साथ लिंक करते हैं। अगर वो ऑलरेडी लिंक्ड नहीं है, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स में लीगल एड एक ऐसी वो संगठन है, तो हम उनके साथ उनको लिंक करते हैं और वो उनको बताते हैं कि क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते।
तो सीमा जी, इस आर्थिक सहायता को लेने के लिए इन लोगों को किस तरह की कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है और किस तरह का पेपर वर्क जमा कराना पड़ता है?
जी, तो इसका तरीका जो है, अगर आप फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारी वेबसाइट पर एक पेज है जो कि है फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। उसमें एक बटन है अप्लाई नाउ, और वो पेज जो है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो तरह तरह की भाषाओं में भी उपलब्ध है वहाँ पे,
जी
उसके बारे में जानकारी आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि केस वर्कर या जो सपोर्ट वर्कर्स हैं या टीम है, रेड क्रॉस की जो टीम है, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको जो है इस प्रोसेस के थ्रू लेकर जाएंगी और आपके साथ उस समय तक रहेंगी जब तक कि आप ने सबमिट नहीं किया अपना पेपर वर्क। कोई खास पेपर वर्क हम नहीं मांगते, मेनली हम जो है हम फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसीज के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कि हम किसी भी सर्विस को डुप्लीकेट करें। ये तो
जी
ऑलरेडी उनके पास, फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस जो एजेंसीज हैं उनके पास एक्सपीरियंस है कि कैसे काम करते हैं इन लोगों के साथ। हमारे पास एक्सपीरियंस है कि टेम्प्रेरी वीजा होल्डर्स को कौन सी तकलीफों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम एक ब्रिज हैं
जी
और उनके बीच में, और जो टेम्प्रेरी वीजा लोग हैं उनके बीच में, और हम उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो
जी
वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको, क्योंकि अभी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे सबसे ज़्यादा जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे न्यू साउथ वेल्स स्टेट में आ रहे हैं और फिर विक्टोरिया में आ रहे हैं, और उसमें भी जो पूरे देश भर में जो नंबर्स हैं वो पहले जो न्यूजीलैंड के रहने वाले लोग हैं वो, और उसके बाद इंडियन नेशनैलिटी के जो लोग हैं वो हैं, और
जी
फिर ऐसे करके जो ये टॉप टू हैं कंट्रीज जहाँ से लोग आ रहे हैं। और क्योंकि इनके पास जो है, मैंने जैसा कहा कि इनके पास वो सपोर्ट नहीं होता जो सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स के पास होता है, लेकिन हम इस कार्यक्रम के तहत हम उनको स्थानीय स्तर पर फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसीज के साथ जोड़ते हैं और हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं इस पर।
जी तो सीमा जी, आपके अनुसार भारतीय समुदाय में यह समस्या ज़्यादा देखी जा रही है, तो क्या आपकी संस्था ने इस पे किसी प्रकार का अध्ययन किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है?
जी देखिए, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि हम भी खुद अभी इस पायलट फेज पे हैं और अभी हम खुद भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कुछ नेशनैलिटीज में ये ज्यादा है और कुछ नेशनैलिटीज में से ये कम है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगी कि क्यों बढ़ गया अचानक से, पर हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उन सब कम्युनिटीज के पास जाएं जिनके पास इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है।
जी
लेकिन मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर कर सकती हूँ जिसमें
जी
कि हमारे पास एक महिला आई थी, वो थी स्टूडेंट वीजा पर और उनके पास एक 1 साल का बच्चा भी था। और जब वो आई तो वो ना एक इंसिडेंट हुआ था जो फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस का, पुलिस भी आई थी पर उस समय जो है एवीओ नहीं निकला था और उनका जो फाइनेंसेस थे वो उनके हस्बैंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, और उनको साथ ही साथ उनको जो है सांस्कृतिक और पारिवारिक दबाव भी बना हुआ था उनके ऊपर। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने उनको जो है ऑब्वियसली हमने उनको आर्थिक सहायता दी, और जिसको के उन्होंने बचा कर रखा, क्योंकि ये 3 महीने तक हम उनके साथ केस वर्क करते हैं, उन महिलाओं के साथ जो किसी भी संस्था के साथ नहीं जुड़ी होती। अगर वो किसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं तो वो संस्था जो है वो उनके बारे में ज्यादा जानती है, तो हम सिर्फ तब उनको फैमिली तब सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। लेकिन इन महिला के केस में ऐसा था कि ये किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, तो हमने इनको एक विशेष स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ जोड़ा, और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो हमने उनको उनके कंसेंट के साथ, हमने उनको विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज के साथ जोड़ा ताकि उनको काउंसलिंग मिल सके। और उस समय जब वो हमारे पास आई थी तो उनको लगा कि वो अभी ये रिश्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रेड क्रॉस ने उनको सारे विकल्पों के बारे में पता चल सके उनको, तो उन सब एजेंसीज के साथ जोड़ा। जैसे हमने उनको लीगल एड के साथ, वो जुड़ी हुई थी लेकिन उनको लीगल एड के साथ वो माइग्रेशन लॉ वगैरह के बारे में नहीं पता था कि उनके
जी
उनके अधिकार क्या हैं, ये नहीं पता था। तो जब वो और वो नौकरी कर रही थी लेकिन कोविड पेंडेमिक के दौरान उनकी नौकरी छूट गई, तो फाइनेंसेस तो हस्बैंड कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके उन्होंने अपना एक बैंक अकाउंट खोला और वो पैसे जो हमसे मिल रहे थे वो उन्होंने उस पर डाले, उस अकाउंट में डाल रहे थे। और कार्यक्रम के अंत में जब 3 महीने की अवधि जब खत्म हुई उनकी, तो उसमें ऐसा हुआ कि उनको वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि मैं अगर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहूँ तो मैं निकल सकती हूँ। वो अपने दम पर सेवाओं तक पहुँचने के लिए आश्वस्त और सहज थी। हमने ये पाया कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन जो चीज़ नहीं हम या जिस चीज की जरूरत है ज्यादा, यू नो, टेम्पररी वीजा होल्डर्स को चाइल्ड केयर नहीं होता, तो वो चीज जो है एक कमी हम कह सकते हैं कि उसमें काम करने की जरूरत है ज्यादा। और इन महिलाओं, ये जो महिला थी, इनके अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि आपने वास्तव में मेरी बहुत मदद की और मुझे सही दिशा दिखाने में आपका योगदान था।
जी
तो ऐसे करके हमारे पास जो है बहुत सी महिलाएं आती हैं, बहुत से देशों से आती हैं, लेकिन हाल फिलहाल जैसा कि मैंने आपको कहा कि न्यूजीलैंड और इंडिया टॉप 2 कंट्रीज हैं अनफॉर्चुनेटली।
तो सीमा जी, भारतीय समुदाय के लोग इस समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? जी
जी बिल्कुल। पहला तो मैं ये कहूंगी कि सुधारने के लिए तो देखिए वो तो हमारी अपनी सोच को हम कैसे बदलते हैं। हम, मुझे लगता है कि हमें लोगों को जागरूक कराने की जरूरत है कि आपके जो फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं, और आप जो है जब आप एक नई कंट्री में आते हैं तो एक एडजस्टमेंट की जरूरत होती है।
जी
मेरा ये मानना है, बीइंग अ माइग्रेंट माई सेल्फ, खुद मैंने जो है वो किया है, तो उस समय आप जो है एक दूसरे से बातचीत करके वो कर सकते हैं। पर भारतीय समुदाय ये कर सकता है। अब रोकने में तो मेरे को पता नहीं, पर हाँ इतना है कि अगर आपको पता है कि कोई गुजर रहा है स्थिति से, तो आप उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जो कि मैंने देखा है शायद है भी महिलाओं के अंदर, के एक दूसरे को सलाह देने के लिए कि अच्छा आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ जा सकती हैं, आप लीगल एड के पास जा सकती हैं या आप रेड क्रॉस के पास जा सकती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपका SBS हिंदी प्रोग्राम से जुड़ने का और महत्वपूर्ण जानकारी देने का। बहुत सी महिलाएं और बहुत से पुरुष हैं जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम आशा करते हैं उन्हें कुछ राहत, कुछ मदद मिलेगी आपके इस प्रोग्राम से।
जी बिल्कुल। थैंक यू नताशा, हमें अपने प्रोग्राम में हिस्सा देने के लिए, और मैं भी यही आशा करती हूँ।